और नो मोर आर्ग्यूमेंट। वहीं वीर उस वक्त टेढ़ी नजरों से रश्मि, राधिका, वंशिका, साथ ही साथ रौनक को गौर से देख रहा था और उन्हें देखने के बाद वो हल्का सा मुस्कुराता हुआ सीधे अपने कमरे में जाने लगा। वीर ने आ भरते हुए मन में सोचा कि मुझे दादाजी या भाई का प्यार मिले ना मिले, लेकिन भाभियाँ तो वाकई में बड़ी प्यारी और खूबसूरत मिली हैं। ये सोचते हुए वीर सीधा अपने कमरे में चला आया था। अब आगे वहीं वीर का खुद को यूं घूरते हुए देखे जाने पर रौनक ने अपने होंठ फींच लिए थे और अगले ही पल वो रश्मि की ओर देखकर जल्दी से बोली, रश्मि दीदी, इस लड़के को देखा आपने? कितना बदतमीज था ये, किस तरह से हमें देख रहा था। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं इसकी आंखें निकालकर गोटियां खेनूं। तभी रश्मि रौनक को शांत कराते हुए बोली, रौनक, मुझे भी उस पर इसी तरह से गुस्सा आ रहा है और इतनी जल्दी वो सुधरने वाला नहीं है, पर दादाजी ने कहा है ना कि हमें उसे सुधारने की थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए और उसे एक मौका देना चाहिए, तब इसमें क्या हर्ज है? अब हमें थोड़ी ना पता था कि वो अरमान का भाई निकलेगा, तुम समझ रही हो ना मेरी बात? और वैसे भी हमें इस तरह से अपने स्वार्थ के लिए अरमान के भाई को उससे दूर नहीं रख सकते हैं। अरमान के सगे रिश्तों के नाम पर पहली बार उसका भाई उसकी ज़िंदगी में आया है, तो मुझे लगता है कि हमें भी अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना चाहिए और इतनी हिम्मत खुद को भी देनी चाहिए कि हम लोग उस वीर रायचंद उर्फ वीर सिंघानिया को बर्दाश्त कर सकें। अब रश्मि की बात सुनकर रौनक सिर हिलाकर कुछ पल के लिए शांत हो गई थी, लेकिन राधिका और वंशिका दोनों ने एक दूसरे की ओर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ देखा। वहीं रश्मि तो अपनी बात पूरी करने के बाद वहां से उठकर चली गई थी, लेकिन उसके जाते ही वंशिका तुरंत बोल पड़ी, रौनक, जिस तरह से ये वीर हमें देख रहा था, इसका मतलब साफ है कि उसकी नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और वैसे भी दादाजी ने भी साफ साफ कहा दिया है कि अगर इसने कोई गलती की तो ये सिंघानिया मैंशन के बाहर होगा। और वैसे मुझे तो नहीं पता इसने क्या क्या हरकतें की हैं, लेकिन तुम लोगों के मुंह से सारी बातें जानने के बाद मैं समझ चुकी हूँ कि ये कितना ज्यादा घटिया किस्म का इंसान है। तो ऐसा घटिया इंसान हमारे प्यारे से परिवार के बीच नहीं रहना चाहिए। अब तुम देखो मैं इसके साथ क्या करती हूँ। कुछ सोचते हुए वंशिका अपने ही शब्दों में उन लोगों को कुछ प्लान समझाने लगी थी कि किस तरह से सबकी नज़रों में वीर वसुंधरा को गिराकर उन्हें इस घर से बाहर निकलवाना है, क्योंकि वसुंधरा को वो लोग वहां पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त आस्था अपने दादाजी से मिलने पर बहुत ज्यादा खुश थी, लेकिन अपनी मम्मी पापा की असली तस्वीर देखने के बाद कितनी ही देर तक वो रोती रही और काफी टूटा हुआ महसूस कर रही थी। तब अंश, जो कि थोड़ी ही दूरी पर आस्था के दादाजी अधिराज सिंह जी की गोद में था, वो अपनी माँ के बहते हुए आंसुओं को टुकुर टुकुर देख रहा था। उसने मन में सोचा, ये क्या, मम्मा ने तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया आते ही रोना धोना शुरू कर दिया। अगर वो इसी तरह से रोएंगी और मेरे डेविल डैडी को इस बारे में अगर पता चला तो वो तो मुझे बहुत डांटेंगे। ओ मम्मा, प्लीज चुप हो जाओ ना, क्यों रो रही हो तुम? कहीं ना कहीं सोचते हुए अंश यहाँ वहाँ कसम सा रहा था। फिलहाल एंजल आस्था के पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे प्यार से समझाया, शांत हो जाओ आस्था, तुम इस तरह से रो मत। अगर तुम इसी तरह से रोंगी या दुखी होगी तो तुम्हारे मम्मी पापा, जो कि इस वक्त इस दुनिया में नहीं है, जो किसी और दुनिया से तुम्हें देख रहे होंगे, उन्हें कितना बुरा लगेगा ये देखकर कि पहली बार उनकी बेटी अपने घर आई है और इस तरह से रो रही है। इसलिए अब तुम्हारी आंखों में आंसू एक भी कतरा नहीं आना चाहिए। और तुम भूल गई क्या, तुम्हारे डेविल पति ने हमें क्या समझाया है कि तुम्हारी आंखों में इतने से भी आंसू नहीं आने चाहिए, और अगर तुम्हारे पति को पता चल गया तो तुम जानती हो ना कि वो हमें नहीं छोड़ेगा। अब जैसे ही एंजल ने बात बदलते हुए आस्था का ध्यान भटकाया, वैसे ही आस्था रोते हुए हंस देती हैं और अचानक उसने एंजल को गले से लगा लिया और बहुत प्यार से बोली, भाभी, सच में आप बहुत अच्छी हैं और डोंट वरी, मैं अब नहीं रोऊंगी, लेकिन पहली बार अपने मम्मी पापा की तस्वीरें देख रही हूँ ना तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, और आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हाँ, हम भले ही आपकी ननद हैं, लेकिन हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपको ननद बनकर नहीं बल्कि बहन बनकर दिखाएंगे। इतना बोलकर आस्था मुस्कुरा देती है। आस्था की सुनकर एंजल ने आगे बढ़कर आस्था को गले से लगा लिया था। वहीं अविनाश नम आंखों से आस्था और एंजल को एकटक देख रहा था और मन ही मन खुश भी हो रहा था कि उसकी बीवी और उसकी बहन एक दूसरे के साथ कितनी मैच्योर अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं। तभी आस्था और एंजल को अविनाश की आवाज सुनाई देती है। अविनाश आस्था को देखकर हल्की मुस्कान के साथ बोल रहा था, अब आप दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो, ये रोना धोना यहाँ बिल्कुल भी नहीं चलेगा। और आस्था, मैं जानता हूँ कि तुम मम्मी पापा की फोटो को पहली बार देख रही हो, इसीलिए तुम्हें उनकी कमी बहुत ही ज्यादा महसूस हो रही होगी, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें खुशियाँ देने के लिए लेकर आया हूँ, ना कि रुलाने के लिए। क्या तुम जानती नहीं अपने पति को? उसने भले ही अपने मुंह से कुछ साफ साफ ना बोला हो, लेकिन उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी कि हमें उसकी बीवी और बच्चे का ध्यान रखना है, ठीक है? ये सुनते ही आस्था मुस्कुरा उठी। फिर दादाजी आस्था को मुस्कुरा कर देखते हुए अचानक बोल पड़े, जैसा हमने सोचा था, हमारी गोरी के लिए बिल्कुल वैसा ही पति उसे मिला है, हमसे भी ज्यादा प्यार करने वाला। ये बोलते हुए उसके दादाजी थोड़ा सा इमोशनल हो गए थे। फिर उन्होंने आस्था को गले से लगा लिया था। आस्था भी अपने दादाजी की दिल की हालत समझ रही थी, इसीलिए वो बात को हंसी में टालते हुए बोली, दादाजी अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम आपसे वादा करते हैं कि अब हम बिल्कुल भी दुखी या मायूस नहीं होंगे और अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखेंगे। तभी अविनाश बोला, गोरी आज तुम अच्छी तरह से सारा दिन यहाँ आराम कर सकती हो, अपना घर अच्छी तरह से देख सकती हो, लेकिन कल से तुम्हें सिर्फ और सिर्फ घूमने जाना है, ओके? मैं तुम्हें पूरी की पूरी कंट्री घुमाऊंगा, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ जाना, और पता है यहाँ पर आधे से ज्यादा कॉम्प्लेक्स तो मेरे ही हैं, जो कि मैं अब तुम्हारे नाम कर चुका हूँ, तो वो सब कुछ तुम्हारे ही है और तुम ही उनकी असली ओनर हो, इसीलिए तुम जहाँ मर्जी वहाँ जाकर आराम से शॉपिंग वगैरह कर सकती हो, जो चाहे वो अपनी मर्जी से खरीद सकती हो। अविनाश की बात सुनकर आस्था मुस्कुराई और ना में सिर हिलाते हुए बोलती है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाई, और वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ आप लोगों के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आई हूँ, शॉपिंग करने के लिए नहीं। आस्था की बात सुनकर अगले ही पल एंजल ने तुरंत आस्था का हाथ अपनी ओर खींचते हुए आश्चर्य से कहा, पागल हो गई क्या आस्था, चुपचाप हाँ में अपना सर हिलाते रहो, तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी तो मुझे करवा देना, ओके? वैसे भी तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए दिल खोल कर खर्च कर रहा है, इसीलिए इनकार मत करो। पता है तुम्हें, जब भी मैं शॉपिंग के बारे में बोलती हूँ तो ये हमेशा आनाकानी करते रहते हैं। अब जैसे ही एंजल ने अपने पति की शिकायतें गिनवानी शुरू की तो वैसे ही आस्था मुस्कुरा देती है और आस्था ने कंधे उचका दिए, जैसे कहना चाह रही हूँ ठीक है भाभी। आस्था अविनाश की ओर देख के चंचलता से बोली, ठीक है भाई, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप मेरी वजह से अपना कोई काम खराब करें, मैं और एंजल भाभी एक साथ जाकर शॉपिंग कर लेंगे और अंश को तब तक दादाजी संभाल लेंगे। अब ये सुनकर दादाजी एक्साइटेड हो गए और खुश होकर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुमने अंश को मेरे साथ रखने का फैसला किया, और वैसे भी अब मैं इस लिटिल चैम्प के बिना बोर हो जाऊंगा।
जैसे ही अधिराज ने अंश को पुचकारते हुए ये कहा, वैसे ही अंश मुस्कुरा दिया। अंश को फीडिंग वगैरह बोतल से ही कराई जाती थी और तो वहां पर नौकरों की फौज मौजूद थी, तो आस्था को अंश की सुरक्षा या अंश की भूख या किसी चीज को लेकर आस्था को बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। लेकिन फिलहाल उसने एंजल से कहा कि वो बस जस्ट गई और अभी तैयार होकर आती है, ये बोलकर आस्था अपने कमरे में चली गई थी। और वहीं एंजल भी तैयार होने के लिए कमरे में गई। कहीं ना कहीं एंजल भी काफी खुश थी कि चलो उसे आज कितने दिनों के बाद आउटिंग करने का मौका मिलेगा। वहीं अविनाश ने सोचा कि इतने दिनों तक वैसे भी वो इंडिया में रहकर लैपटॉप के द्वारा ही काम कर रहा था, कई महीनों से वो इंडिया में ही था, तो इसीलिए उसे अब अपने ऑफिस जाना चाहिए और अपने काम संभालना चाहिए। आस्था बिल्कुल ठीक कह रही है, उसे हर वक्त आस्था के साथ भी नहीं रहना चाहिए, वरना वो शायद खुलकर एंजॉय ना कर पाएगी। और वो यहाँ पर थोड़े दिनों के लिए घूमने फिरने के लिए आई है, तो उसे एंजल के साथ घूमने फिरने देना चाहिए, उसकी मर्जी के अकॉर्डिंग। ये सोचते हुए अविनाश अब जल्दी तैयार होकर अपने ऑफिस के सफर पर निकल चुका था। और एंजल भी अब तैयार होकर बाहर आई। एंजल ने एक बेस्ट ड्रेस पहनी थी, हालांकि जब से वो इंडिया में थी तब से उसने नॉर्मल इंडियन ड्रेस पहनना शुरू कर दिया था, लेकिन वापस से अपने देश अपनी कंट्री में आने के बाद एंजल ने एक बार फिर से खुद को वेस्टर्न लुक में ढाल लिया था। वहीं आस्था ने अरमान की पसंद का एक अनारकली सूट पहना था, और जैसे ही वो तैयार होकर बाहर आई तो अगले ही पल एंजल उसे देखकर मुस्कुराई और उसकी तरफ देख के एकदम से बोली, क्या तुम मेरे साथ ये कपड़े पहनकर बाहर चलने वाली हो? एंजल शब्द सुनते ही आस्था ने अपने कपड़ों को गौर से देखते हुए कहा, क्या हुआ भाभी, इन कपड़ों में क्या दिक्कत है? अगले ही पल जल्दी से एंजल आस्था के पास चली आई और उसका हाथ थामकर पलक झपकाते हुए बोली, इन कपड़ों में कोई परेशानी नहीं है और यकीन मानो तुम इन कपड़ों में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही हो, लेकिन क्यों ना तुम अपनी पर्सनालिटी को थोड़ी बहुत चेंज कर लो? एंजल आस्था से ये सवाल पूछने से रोक नहीं पाई। जैसे एंजल ने ये कहा तो ये सुनकर आस्था कन्फ्यूजन से एंजल की ओर नासमझी में देखने लगी। तब एंजल एकदम से हंसी, फिर आस्था को धीमी आवाज में समझाती है, देखो ये तुम्हारा ससुराल नहीं है, इनफैक्ट तुम्हारा वो डेविल पति भी यहाँ कहीं आसपास नहीं है, तो क्यों ना तुम थोड़ा सा खुद को चेंज करो। और वैसे भी आस्था, पति लोगों को ना हर वक्त एक जैसे लुक में पत्नी पसंद नहीं आती है, तो इसीलिए बीवियों को अलग अलग रूप धारण करने के लिए खुद को थोड़ा सा चेंज कर लेना चाहिए। अब ये सुनकर आस्था थोड़ा सकपका गई थी, लेकिन फिलहाल वो मुंह बनाते हुए एंजल की तरफ देखते हुए हिचकिचा के बोली, लेकिन भाभी मुझे इसी तरह के कपड़े पहनना पसंद है और मैं इसी तरह के कपड़ों में कंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे नहीं लगता कि मुझे चेंज करने की कोई ज़रूरत है, और मेरे पति अरमान जी को मैं इन्हीं कपड़ों में सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगती हूँ। जैसे ही आस्था ने अपने बालों को थोड़ा सा संवारते हुए ये कहा तो ये सुनते ही एंजल मुस्कुराई और बेपरवाही से कंधे उचकाते हुए बोली, ओह आस्था, मैं जानती हूँ कि तुम कितनी खूबसूरत हो और तुम्हारा पति भी तुम्हें इन्हीं कपड़ों में बेहद खूबसूरत समझता है। लेकिन सपोज करो तुम्हारे पति इतना बड़ा बिजनेसमैन है, उसके आसपास एक से बढ़कर एक हॉट और खूबसूरत लड़कियाँ रहती हैं जो कि छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं। क्या तुमने कभी ट्राई किया कि वेस्टर्न ड्रेस में तुम कैसी लगोगी? अच्छा चलो, अब मैं तुम्हारा वार्डरोब सेट करूंगी और इन 15 दिनों तक तुम बिल्कुल ये बात भूल जाओगी कि तुम शादीशुदा हो। तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल लड़कियों के जैसी जिंदगी जीनी है। हाँ, वापस से मेंशन जाने के बाद शायद उसको देखकर तुम्हें याद आ जाएगी कि तुम शादीशुदा हो। जैसे ही एंजल ने इस तरह की बातें की, आस्था मुस्कुराते हुए हामी भरी। ठीक है भाभी, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करो। वैसे भी आस्था सोच रही थी कितने दिनों से उसने कोई मौज मस्ती और धमाल नहीं मचाई है, और लास्ट टाइम उसने रौनक की गोद भराई में थोड़ा बहुत एंजॉय किया था। आस्था की तो अपनी गोद भराई भी नहीं हुई थी, क्योंकि जिस वक्त वो प्रेग्नेंट थी उस वक्त राजवीर को मारने का जुनून उसके सर पर सवार था, तो इसीलिए उस वक्त आस्था के डर के चलते गोद भराई की रस्म नहीं हो पाई थी। लेकिन फिलहाल रौनक की रस्म में उसने दिल खोलकर मस्ती की थी और फिलहाल आस्था की अपने इस ऑस्ट्रेलिया के ट्रिप को एकदम यादगार बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने एंजल से कहा, ठीक है भाभी, इस वक्त मैं आपके देश आपकी कंट्री में हूँ तो आप जैसा कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी, बस मैं यहाँ से ढेर सारी प्यारी मनमोहन यादें अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। आस्था की बात सुनकर एंजल मुस्कुरा देती है और उसके माथे को चूमकर बोली, ये हुई ना बात, अब देखो हम दोनों ननद भाभी मिलके किस तरह से धमाल मचाती हैं। ये बोलकर वो दोनों साथ में हंस देती हैं। जल्दी ही एंजल और आस्था तैयार होकर नीचे जाने लगी थी, और जैसे ही आस्था ने अपने दादाजी के गोद में अपने बेटे को देखा तो वो जल्दी से उसके पास जाकर उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा, आप बड़े नानू को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, मम्मा अभी गई और अभी आई, ठीक है ना? वहीं अंश, जो कि अपनी टिमटिमाती हुई सुंदर आंखों से आस्था को ही टकटकी लगाए देख रहा था और ऐसा लग रहा था कि वो कहना चाहता हो कि मम्मा आप जहां भी जा रही हैं प्लीज अपना ध्यान रखना और खुद को कुछ मत होने देना। आपको क्या लगता है क्या चल रहा था वंशिका और राधिका के दिमाग में, और आगे क्या होगा आस्था और अरमान की इस कहानी में?